Hare Krishna. Hare Krishna. So, thank you very much for coming to this program this evening. We had one such program once before. How many of you came to that program? Please raise your hands. How many of you came to our previous program? That was about 3 months ago. How many of you are coming here for the first time? Okay. Thank you. Thank you very much. Hare Krishna. So, today's topic is Who Are You? This topic has been derived from the Vedic concept Athato Brahma Jigyasa. How many of you know Sanskrit? Please raise your hands. How many of you study Sanskrit in school? Just the basic Sanskrit. Okay. Most of you. Okay, thank you. Because when I use the Sanskrit terms, I wanted to make sure that you all are acquainted with the language. In the Vedas, it has been pointed out that the human life begins, or the purpose of human life is to inquire about oneself. And the expression, therefore, is Athato Brahma Jigyasa. Athato means now, that. It means now, atha, atha, ataha. Athato, now that you have got the human form of life, you must inquire about Brahma Jigyasa. Brahma means spiritual reality. There is this material nature, and beyond this material nature, there is a spiritual reality. How many of you accept that there is a spiritual reality beyond this material nature? Please raise your hands. Okay, very good. Thank you. Thank you. Beyond this material nature, there is a spiritual reality, and it is important to understand that there is a spiritual reality. Now, for example, matter is inert, right? Generally, matter is inert. Matter doesn't have any consciousness. For example, this table is matter, right? This table is made of matter. Does this table have consciousness? It's inert, right? The table is inert. What about this? This is inert. What about this? What about the floor? Inert. What about the pillar? What about the wall? It's inert matter, right? Matter is inert. But what about you? What about you? Are you inert? You are conscious. Right? आप में चेतना है, आप चेतन है, आप जड़ नहीं है. तो what makes you and I conscious, a living? We are living. Hindi, it's better that I speak in English. It's forcing everyone to. I speak in Hindi in the class here. But since you are students, I am taking the liberty to speak in English. Right? You all are educated. In your college, and the university, the lectures are given in Hindi or English? English. Okay. So, in the college, you listen to the lectures in English. So, here also, I am subjecting you to listen to my lecture in English. Alright? Okay. The main reason is my Hindi is not so good. I feel more expressive, I feel more comfortable speaking in English. So since you all are educated young men, I decided to speak in English. Is that all right? Does it meet with your approval? Aap log sanmati dete hain? Okay. Thank you. So now we are living, right? We are not inert. We are living, right? We are alive. We are alive. Now, our body is made of what? Our body is made of matter, right? Our body is made of matter. Now, generally, matter is inert, but our bodies made of matter is living. Why? How many of you know the answer? Why your body is alive? Please raise your hand. Very good. Please tell me why your body is alive. Because of your mind. Okay. Because of the soul. Because of the presence of the soul. You see, mind also is matter. Mind is subtle matter. It is the soul that makes the body alive. Like for example, at some point, the body becomes dead, right? Dead means not living anymore. Now, why does a body become dead? Like say for example, like we are here and we are talking to each other. But when someone all of a sudden dies, will he be able to talk to us? He won't be able to talk to us, right? Okay, let me put it this way. Now I am talking to you. And you are thinking that Swamiji is here, he is talking to us. Now if I drop dead, if I die, now, my body will be lying here, right? Will that body be living body or dead body? That body will be a dead body. Now why all of a sudden the body became dead? Now, don't you say, because he is left. Now, who is that he who left? The soul, when the soul leaves the body becomes dead. Right? Now, the question is, what is this soul? In India, practically everybody believes in the existence of the soul. I didn't go into that as yet. I'm just giving the prelude. So in India, everybody practically believes in the existence of soul. How many of you believe in the existence of soul? Please raise your hand. Aap mein kaun mante hain ki atma hai? शायद हाँ हिंदी में बोलना ही अच्छा रहेगा. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी हियर? कौन हिंदी नहीं समझते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी? ओके, एवरीवन अंडरस्टैंड्स हिंदी. ओके ओके, ठीक है, मैं तो हिंदी में ही बोलने का कोशिश करूंगा. ठीक है, ओके. तो शरीर, हाँ, ये शरीर भौतिक है, हाँ, और भौतिक होने के कारण ये शरीर जड़ है. मतलब ऐसे इस शरीर में चेतना नहीं रहना चाहिए. परंतु हमारा शरीर चेतन क्यों है? आपका शरीर चेतन है? आप में चेतना है? हाँ, चेतना क्यों है? हाँ, चेतना है क्योंकि शरीर में आत्मा है. हाँ, आत्मा जब तक शरीर में रहता है, हाँ, आत्मा शरीर में जब तक रहता है तब तक शरीर जिंदा रहता है. और जब आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है तब ये शरीर का मृत्यु होता है. तो ये जो आत्मा, हाँ, जैसे मैं पूछा था, हाँ, कि आप में से कौन आत्मा है ये मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो लगभग आप सभी हाथ उठाए थे. हाँ, इसका मतलब ये है कि मैं जो कह रहा था कि भारत में लगभग हर आदमी ही मानते हैं कि आत्मा है. परंतु अब सवाल ये है कि आत्मा क्या है, आत्मा कौन है? ये आत्मा के बारे में जानने का जो प्रयास, आत्मा के बारे में जानने का जो चेष्टा है, उसे ब्रह्म जिज्ञासा कहा जाता है. हमारे शास्त्र में आत्मा के विषय का जो ज्ञान है उसको ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है. अर्थात ये ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब क्या है? प्रश्न है ना, जिज्ञासा का मतलब होता है प्रश्न. तो ये ब्रह्म जिज्ञासा जो है इसमें तीन प्रश्न है. ये तीन प्रश्न लेकर ब्रह्म जिज्ञासा बनता है. पहला प्रश्न है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, हाँ, और मैं कहां से आया हूं और हमें यहां क्या करना चाहिए, मैं क्यों यहां हूं. ये जो तीन प्रश्न हैं, ये तीन प्रश्न को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है. और ये ब्रह्म जिज्ञासा के भित्ति पर ही हमारे वेद के शास्त्र का प्रकाश हुआ है. वेद का जो ज्ञान है इस तीन प्रश्न पर आधारित है. मैं कौन हूं, तो ये प्रश्न जब हम करते हैं, मैं कौन हूं, हमारा सरल भावना होगा कि मैं ये शरीर हूं, है ना. हम सब ये शरीर को मेरा स्वरूप मानते हैं. परंतु जब हम गंभीर रूप से विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है. जैसे जब आप छोटे थे, करीब 3 साल के थे, तो आपका शरीर कितना बड़ा था, कैसा था? इतना छोटा सा शरीर था, है ना. हाँ, उसके बाद जब 10 साल का हुआ और बड़ा हुआ, हाँ, और उसके बाद जब 15 साल का हुआ, तो अगर आप विचार करेंगे कि 3 साल का शरीर आपको जो था वो क्या अभी है? नहीं है। 3 साल का शरीर जो था उसका उसमें जो सेल था 3 साल का शरीर में, उस सेलों में से एक सेल का भी, एक कोष भी अब जो शरीर है उसमें नहीं है। 7 साल के बीच शरीर का सारे कोषों का परिवर्तन हो जाता है। कोई सेल तो 2-3 मिनट में खत्म हो जाता है और कोई सेल जैसे ब्रेन सेल थोड़ा सा अधिक समय तक रहता है, परंतु 7 साल के बीच सारे सेलों का, सारे शरीर का, सारे कोषों का परिवर्तन हो जाता है। मतलब आज जिस कोषों की द्वारा आपका शरीर बना है, ये तो आप मानते हैं शरीर किससे बना है? कोषों से बना है। ये जो अस्थि मज्जा मांस ये है, ये कोष है, कोष से बना हुआ है ना, बायोलॉजिकल सेल्स। तो ये सेल, ये जो कोष जो है, ये 7 साल के बीच उसका परिवर्तन, पूरा परिवर्तन हो जाता है। मतलब आज जिस शरीर से, जिस से सेलों से, जिस कोषों से आपका शरीर बना है, 7 साल के बाद उसका एक कोष भी उस शरीर में नहीं रहेगा। तो ऐसे शरीर का हर समय परिवर्तन होता रहता है, ऐसे शरीर का परिवर्तन होता है। 3 साल का जो शरीर था वो आज बिल्कुल नहीं है। आज जो शरीर आपको है उसका पूरा परिवर्तन हो चुका है, परंतु आप तो वही एक ही आप है ना। 3 साल का आप और आज की आप और 20 साल के बाद जो आप होंगे, आप तो वही एक ही आप रहेंगे, है ना। हाँ, जैसे हाँ, आपका नाम क्या है तुम? अच्छा, आप बोलिए, आप मुकेश हैं। अच्छा, 3 साल का समय में आपका शरीर कितना, कैसा था? बहुत छोटा था। अच्छा, आज का जो शरीर है वो बिल्कुल परिवर्तन हो गया है वो दोनों शरीर में, है ना। परंतु 3 साल का आप और आज का जो आप हैं, आप तो एक ही आप है ना। हाँ, जैसे आप मुकेश, वो मुकेश ही हैं, है ना। हाँ, अच्छा, 20 साल बाद मुकेश मुकेश ही रहेगा, परंतु शरीर का परिवर्तन होगा, हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि शरीर का परिवर्तन होने से भी हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा है। मैं जो हूं, मैं वही हूं जो मैं पहले था और बाद में भी वही मैं रहूंगा। तो ये जो मैं हूं, तो प्रश्न अब हो रहा है कि मैं कौन हूं? मैं ये शरीर हूं क्या? नहीं, ये शरीर पंचभूत से बना हुआ है, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश से। तो ये शरीर का हर समय परिवर्तन होता है, परंतु शरीर का परिवर्तन होने से भी हम वो एक ही व्यक्ति रह जाते हैं। तब अब सवाल पैदा होता है कि वो कौन है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। अच्छा, और एक हाँ विचार हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैं कुछ समय पहले बोल रहा था कि मैं अब यहां बैठकर आपसे कुछ बोल रहा हूं और आप भी, आपका मन में क्या सोच रहे हैं? आप भी सोच रहे हैं कि स्वामी जी यहां बैठकर हमारे सामने कुछ कह रहे हैं। तो अगर मेरा अब मृत्यु हुआ तो मेरा शरीर यहां पड़ा रहेगा, मेरा शरीर यहां रहेगा, परंतु आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि वो चले गए हैं, है ना, चले गए हैं। तो जो चला गया है वो कौन है? वेरी गुड, वो आत्मा है। तो आत्मा जब, तो इससे हम क्या सिद्धांत कर सकते हैं? कि आत्मा जब तक शरीर में रहता है तब तक शरीर जिंदा रहता है, जब आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है तो मृत्यु होता है। तो मृत्यु किसका होता है? शरीर का मृत्यु होता है ना, आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। तो अब आप बताइए, आप कौन हैं? आप शरीर हैं या आत्मा हैं? बहुत अच्छा। तो ये ही विचार, ये ही विचार है वेद का विचार। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, है ना। तो ब्रह्म जिज्ञासा का पहला सवाल, पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया। मैं कौन हूं?
आत्मा।
आप कौन हैं?
आत्मा।
बहुत अच्छा। और ये शरीर क्या है? नहीं, शरीर आत्मा नहीं है। तो ये शरीर, अच्छा हम अब ये विचार करेंगे, ये शरीर क्या है? अच्छा, आप सब भगवत गीता मानते हैं? अच्छा, भगवत गीता आप पढ़ते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवत गीता किसने सुनाया था? भगवान श्री कृष्ण ने। किसको सुनाए थे? अर्जुन को। बहुत अच्छा। अच्छा, भगवत गीता में भगवान ये शरीर के बारे में क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा, कौन बोला? बहुत अच्छा। उन्हें क्या सुना आपका बोले हैं उन्होंने? ये शरीर एक वस्त्र है, एक पोशाक है, है ना। जैसे भगवान क्या कह रहे हैं? जीर्णानि वासांसि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्नानि संजाति नवानि देही। अर्थात जब कपड़ा जब पुराना हो जाता है तो आप क्या करते हैं? पुराना कपड़ा उतार कर एक नया कपड़ा पहनते हैं, है ना। तो वैसे ही ये शरीर जब पुराना हो जाता है, हाँ, अर्थात ये शरीर जब पहनने का लायक नहीं रहता है, तब हम ये पुराना शरीर छोड़कर एक नया शरीर ग्रहण करते हैं। तो कौन करते हैं? बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, ये उज्जैन जैसे धर्म स्थान में रहने का सुफल ऐसा ही होता है। हाँ, धर्म स्थान में रहने से धर्म का प्रभाव आता है, हाँ, उससे बचपन से ही आपका संस्कार बहुत अच्छा हुआ, हाँ, बचपन से ही आपको सही ज्ञान मिल गया है, हाँ, ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो ये शरीर एक वस्त्र जैसा है, पुराना कपड़ा उतार के जैसे हम नया कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही ये शरीर जब पुराना हो जाता है तो ये पुराना शरीर उतार कर, पुराना शरीर छोड़कर हम एक नया शरीर ग्रहण करते हैं। तो ये शरीर ग्रहण और त्याग कौन करता है? आत्मा करता है। आत्मा जब एक नया शरीर ग्रहण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जन्म कहते हैं, हाँ? जन्म का मतलब है आत्मा का एक नया शरीर ग्रहण। और मृत्यु का मतलब क्या है? आत्मा का पुराना शरीर त्याग। तो आत्मा शरीर ग्रहण करते हैं, आत्मा शरीर त्याग देते हैं। शरीर का जन्म होता है, शरीर का मृत्यु होता है, पर आत्मा का क्या जन्म होता है या मृत्यु होता है? नहीं, आत्मा नित्य है, हाँ? तो ये जो आत्मा की विषय का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को वेद में ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। ब्रह्म का मतलब है चिन्मय, चेतन, आध्यात्मिक। आत्मा चिन्मय है, आत्मा नित्य है, आत्मा चेतन है। तो ये आत्मा के बारे में जो ज्ञान है उसे ब्रह्म ज्ञान कहा गया है, और आत्मा के बारे में जो प्रश्न है उसको ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। तो आप समझे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो आप बताइए ये जो ब्रह्म जिज्ञासा है आत्मा के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में, आध्यात्मिक विषय के बारे में जो प्रश्न है वो जरूरी है या नहीं, उसका प्रयोजन है? ये जो प्रश्न है, ये जो जिज्ञासा है, ये जो अनुसंधान है, ये सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा, हम जब तक इस भौतिक जगत में हैं, भौतिक जगत का सारे वस्तु का कुछ प्रयोजन होता है, जैसे मकान, गाड़ी, वाड़ी, पैसा, दौलत, इसका जरूरत होता है। परंतु मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात आपका क्या उसको साथ ले जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे। मृत्यु के पश्चात आप आपका रुपया ले सकेंगे आपके साथ? नहीं। आपका मकान का एक कमरा भी आप ले जा सकेंगे? नहीं। आप जो आपका जो डिग्री है वो ले सकेंगे मृत्यु के पश्चात? नहीं। तो मृत्यु के पश्चात ये सब कुछ हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। परंतु ये जो ब्रह्म ज्ञान है या दिव्य ज्ञान है, इस ज्ञान हमारा साथ जाएगा, और इस ज्ञान मिलने से हमें पता चलेगा कि हम कौन हैं, हम कहां जा रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो अब हम ये स्लाइड्स के माध्यम हम कुछ तथ्य विश्लेषण करेंगे यहां। स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा, तो इसका मतलब हु आर यू, इसका मतलब क्या होता है? आप कौन हैं? हाँ, आप कौन हैं? तो इसका विचार तो हम कर चुके हैं। हाँ, आप इसका सिद्धांत हो गया है? सिद्धांत क्या हुआ है? हम, हाँ, आप आत्मा है। हाँ, और शरीर, शरीर आत्मा का एक वस्त्र जैसा है, एक आवरण जैसा है। शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। जैसे जो कपड़ा आप पहने हुए हैं, वो आप कपड़ा पहने हुए हैं परंतु कपड़ा आप नहीं है, है ना? वैसे ही शरीर भी हमारा असल स्वरूप नहीं है। अच्छा, तो इसके विचार हम कर चुके हैं। हमारा मन भी, शरीर तो हम नहीं है परंतु हम क्या, हमारा मन है? नहीं, मन का भी परिवर्तन होता है, मन भी भौतिक है। मन सूक्ष्म है, सूक्ष्म जड़ पदार्थ है, और सूक्ष्म होने के कारण मन का नाश इतना जल्दी जल्दी नहीं होता है। जितना स्थूल होता है उसका नाश भी उतना ही, वो उतना ही जल्दी उसका खत्म हो जाता है, और जितना सूक्ष्म होता है उसका स्थिति उतना ही अधिक होता है। आप क्या, आपका बुद्धि है? नहीं, वो भी नहीं। आप बोलते हैं ना, मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैर, और मैं कौन हूं? मैं नहीं बोलते हैं कि मेरा आत्मा, हम क्या बोलते हैं? मैं आत्मा हूं। तो मैं कौन हूं? आप कौन हैं? बहुत अच्छा। तो आत्मा का जो प्रमाण, आत्मा जो है इसका प्रमाण हम कुछ पहले विचार किया था, मैं बताया था शरीर का परिवर्तन होता है, है ना? तो ये आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर में उसका गमनागमन होता है। एक जन्म के समय एक बच्चा का शरीर, उससे बढ़ते हुए एक जवान का शरीर हुआ, धीरे धीरे वो शरीर में बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा आने के बाद शरीर का मृत्यु होता है, मतलब आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां आत्मा एक शरीर ग्रहण किया उसे हम जन्म कहते हैं, और एंड पॉइंट जब आत्मा ये शरीर छोड़कर चला जाता है उसको हम मृत्यु कहता है। तो ये जन्म और मृत्यु किसका होता है? शरीर का होता है। आत्मा अज या और अमर है। आत्मा का न तो जन्म होता है, आत्मा का न तो मृत्यु होता है। आत्मा अमर है, स अमृतताय कल्पते। ये जो आत्मा है ये आत्मा अमृत, मतलब जिस आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है। मूव टू द नेक्स्ट। अच्छा, और अच्छा आत्मा के बारे में हम अब जब विचार करते हैं, आत्मा का एक गुण है कि आत्मा इंडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब इंडिस्ट्रक्टिबल का हिंदी प्रतिशब्द क्या है? नहीं, आत्मा अविनाशी है। हाँ, आत्मा को नाश नहीं होता है। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? विनाश है ना। डिस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है जिसका विनाश होता है, और आत्मा का विनाश नहीं होता है। तो इसका मतलब आत्मा का एक गुण है, आत्मा अविनाशी है। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि आत्मा का कोई अस्त्र के द्वारा आत्मा को काटा नहीं जाता है, कोई अस्त्र के द्वारा आत्मा को कोई काट नहीं सकता है, आग के द्वारा आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है, पानी में आत्मा को डुबाया नहीं जा सकता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, अस्त्र के द्वारा आत्मा को काटा नहीं जा सकता है। नैनं दहति पावकः, अग्नि के द्वारा पावक, अग्नि के द्वारा आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है। न चैनं क्लेदयन्तो अपो, पानी के द्वारा आत्मा को भिगाया नहीं जा सकता है। नायं शोषयति मारुतः, और वायु के द्वारा आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वं इदं ततम्। ये जो आत्मा, ये आत्मा अविनाशी है। आत्मा को विभक्त किया नहीं जा सकता है। जैसे ये शरीर को हम काट सकते हैं, विभाग कर सकते हैं, परंतु आत्मा को हम काट नहीं सकते हैं, भाग नहीं कर सकते हैं। जैसे जब जन्म होता है, पिता माता से जन्म होता है, ऐसा नहीं कि पिता का आत्मा खंडित होकर पुत्र का जन्म होता है ना। पिता माता से शरीर का प्राप्ति होता है, आत्मा एक नया शरीर माता के गर्भ में ग्रहण करता है। आत्मा सच्चिद आनंद है, मतलब आत्मा नित्य है, आत्मा चेतन है, आत्मा आनंदमय है। और आत्मा का स्थिति कहां होता है? आत्मा कहां शरीर में, कहां आत्मा रहता है? हाँ, हृदय में आत्मा रहता है, हृदय की आसन में आत्मा स्थित रहता है। आत्मा शरीर को परिवर्तन करता है। जैसे आप कपड़ा को पहनते हैं, उतारते हैं, वैसे आत्मा ही शरीर को धारण करता है और शरीर को त्यागता है। आत्मा बहुत क्षुद्र है। केशाग्र शतभागस्य सतधा, बाल की अग्रभाग को 10,000 भाग से विभक्त करने से उसका एक भाग का जितना आयतन होता है, आत्मा उतना क्षुद्र है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, बहुत क्षुद्र है। भौतिक दृष्टि से हम आत्मा को दर्शन नहीं कर सकते। और आत्मा के विषय में हम चिंतन भी नहीं कर सकते हैं। आत्मा अचिंतनीय है, आत्मा इनकंसीवेबल, अचिंतनीय है। Okay, let's go to the next. Go to the next. No, go to the next. Acha, theek hai. Yeah, we skip that also. अच्छा, आत्मा जो आत्मा एक मशीन, शरीर एक मशीन जैसा है, एक यंत्र है। यंत्र रूढ़ानी मायाया। तो आत्मा जो है ये शरीर है, आत्मा का एक यंत्र है, जिस यंत्र में जैसे गाड़ी है। गाड़ी क्या खुद चल सकता है? नहीं, गाड़ी को चलाना पड़ता है। कौन चलाता है? ड्राइवर, है ना। तो वैसे ही शरीर को, शरीर एक यंत्र है और ये शरीर को चलाने वाला, शरीर का ड्राइवर कौन है? आत्मा है। हाँ, ये शरीर को जब तक आत्मा शरीर में है तब तक शरीर कार्य करता है। जब आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है, जैसे ड्राइवर जब तक है गाड़ी में, गाड़ी चलता है, जब ड्राइवर गाड़ी से उतर निकल जाता है तब गाड़ी नहीं चलता है। तो वैसे भगवान कह रहे हैं कि यंत्र रूढ़ानी मायाया। माया इस भौतिक प्रकृति, जड़ा प्रकृति हमें एक शरीर प्रदान किया है। ये शरीर, और ये शरीर भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जैसे मनुष्य का शरीर, जानवर का शरीर, पंछी का शरीर, पेड़ का शरीर, पौधे का शरीर, कीट का शरीर, कीड़े का शरीर, पतंग का शरीर। हरे कृष्णा, आप लोग हरे बोल, आप खामोश चुप रहिए, आप लोग हरे कृष्णा बातें मत करना। वो बातें क्यों कर रहे हैं? आपके क्लास में बात करते हैं ऐसे? नहीं करना चाहिए, ये क्लास हो रहा है, हम कुछ समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आप सुनिए ठीक से। सुनने के लिए तो आए ना आप लोग, कुछ जानने के लिए आए हैं। तो शरीर एक यंत्र जैसा है और इस यंत्र को ये शरीर प्रकृति प्रदान करते हैं। प्रकृति मतलब इस भौतिक जगत। इस भौतिक जगत पंच महाभूत से, मतलब मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत से ये शरीर तैयार करता है। तो ये स्थूल शरीर जो है ये पंच महाभूत से बना है, जैसे मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। और इसके अलावा हमारा और एक सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर बना है मन, बुद्धि और अहंकार के द्वारा। तो ये हमारा दो शरीर है, दो जड़ शरीर है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। और ये शरीर को चलाने वाला कौन है? आत्मा है। तो ये आत्मा, ये आत्मा कोई मशीन नहीं है, परंतु जैसे मशीन और शरीर में फिर अंतर क्या है? जैसे मशीन को मनुष्य ने बनाया है ना, मशीन ऐसे तैयार नहीं हो जाता है। मशीन को किसी ने बनाता है जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर खुद कुछ काम कर सकता है, परंतु वो कंप्यूटर के किसी ने बनाया है, कौन बनाया? मनुष्य ने बनाया, और कंप्यूटर में प्रोग्राम होना चाहिए, वो प्रोग्राम के अनुसार कंप्यूटर काम करता है। तो ऐसे अगर मनुष्य का जो ये है स्थिति है, मनुष्य में ऐसे अपना चेतना के द्वारा ही मनुष्य काम करता है, आत्मा ये शरीर को प्राप्त होकर ये शरीर से, शरीर के माध्यम कार्य करता है। अच्छा, अब प्रश्न होता है, ये भौतिक जगत में हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं, जिसे संसार कहा जाता है। हिंदी में ये संसार शब्द का प्रयोग होता है, व्यवहार होता है, संसार। संसार का मतलब क्या है? संसार का मतलब है जन्म और मृत्यु का जो चक्र है। तो ये संसार, एक विचार तो वो है आप जो कर रहे थे कि सारा विश्व को हम संसार कहते हैं, असल में सारे भौतिक जगत को हम संसार कहते हैं, परंतु संसार शब्द का असल अर्थ है, संसार शब्द का असल अर्थ है जन्म मृत्यु का चक्र। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र में रहना चाहिए, यहां से जन्म मृत्यु का चक्र से मुक्त होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यहां भौतिक जगत में हम केवल कष्ट ही भोग कर रहे हैं। कष्ट का मतलब क्या होता है? हम जब कुछ चाहते हैं वो जब नहीं मिलता है तब उसे हम कष्ट कहते हैं, है ना? कष्ट का मतलब है जो हम चाहते हैं उसको नहीं मिलना। तो असल में हमारा सारे चाहना आध्यात्मिक है, क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं उसके कारण हम, हमारा चाहना भी आध्यात्मिक है। क्योंकि हम आत्मा हैं उसके कारण हमारे चाहना भी आत्मिक हैं। हम आत्मा हैं तो हमारा चाहना कैसा होगा? आत्मिक होगा। तो मतलब देखिए, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है। हम आत्मा हैं उसके कारण हम मरना नहीं चाहता है, है ना? कोई भी व्यक्ति मरना चाहता है क्या? मरना नहीं चाहता है, परंतु उसको मरना होता है। हर व्यक्ति को मृत्यु होता है, परंतु पहले हम विचार कर चुके हैं मृत्यु किसका होता है? मृत्यु शरीर का होता है, देह का होता है। परंतु आप कौन है? आत्मा है। आत्मा का मृत्यु होता है? नहीं। आपका मृत्यु होगा? नहीं। आपका, आप आत्मा हैं उस कारण आपका मृत्यु नहीं होगा, शरीर का मृत्यु होगा। और ये संसार जो है, मतलब जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, उसमें क्या होता है? हमको एक नया शरीर ग्रहण करके वो शरीर त्यागना पड़ता है। हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमको त्यागना होता है। तो ये जो स्थिति है, ये जो अवस्था है, इससे हमको अगर मुक्त होना चाहते, हम अगर चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? जन्म और मृत्यु का जो ये चक्र है, देखिए, ये है जन्म और माया की दो रूप है। एक रूप से माया हमें एक शरीर प्रदान करती है, और दूसरे रूप के मृत्यु के रूप में माया आकर हमारे शरीर छीन लेती है। तो ये जो चक्र है, इससे हम कभी मनुष्य शरीर, कभी पशु शरीर, कभी पेड़ पौधे का शरीर हमें मिल रहा है। तो ये जो चक्र है, इस चक्र से अगर हम निकलना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये प्रश्न अब आ रहा है कि ये आत्मा जो है, चाहे ये मनुष्य का आत्मा हो या शेर की आत्मा हो, ये कोई कोई पंछी का आत्मा हो, कोई जानवर का आत्मा हो, हाँ, सारे आत्मा ही भगवान का अंश है। सूरज का किरण, सूरज का जो किरण है वो सूरज का अंश है ना। तो वैसे ही आत्मा भगवान या परम आत्मा का अंश है। तो अंश का स्थिति तभी पूर्ण होता है जब अंश पूर्ण के साथ युक्त हो जाता है। तो इसके इस विषय को समझाने के लिए हम एक दृष्टांत देंगे, एक दृष्टांत के द्वारा हम इसको समझाने को कोशिश करेंगे। देखिए चिंगार, हाँ, चिंगार आग है ना, परंतु चिंगार बहुत एक क्षुद्र आग की कण है, हाँ। तो चिंगार जब तक आग में रहता है तब तक वो चिंगार रहता है, हाँ, तब तक वो आग रहता है। जब चिंगार आग से निकल जाता है तब चिंगार का, हाँ, अग्नि का जो शक्ति था वो खो बैठता है ना। जैसे आग में ज्योति है, चिंगार क्या होता है, कुछ समय के बाद उसका ज्योति खत्म हो जाता है। आग में ताप रहता है, हाँ, कुछ समय बाद चिंगार का ताप भी खत्म हो जाता है। और आग से निकलकर चिंगार जब भस्म में गिर जाता है तब चिंगार भी भस्म बन जाता है ना। तो वैसे ही हम भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश होने के कारण भगवान का जो गुण है वो हम में भी है। जैसे सत चित आनंद, सत का मतलब है नित्य, चित का मतलब है चेतन, आनंद का मतलब है आनंद। तो हम सच्चिदानंद है, हम सब सच्चिदानंद है। तो ये जो सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है, ये स्वरूप भौतिक जगत में जब हम आते हैं तो उसको हम खो बैठते हैं। जैसे चिंगार जब भस्म में गिर जाता है तब चिंगार क्या होता है, चिंगार को क्या स्थिति होता है, चिंगार भी भस्म बन जाता है ना। वैसे ही हम जब आत्मा होते हुए भी हम जब भौतिक जगत में गिर जाते हैं तो हम इस भौतिक जगत के साथ हमारा परिचय स्थापना कर लेते हैं। मतलब हम ये शरीर को हमारा स्वरूप समझना शुरू करते हैं, हाँ। तो देखिए चिंगार आग से निकलने के कारण उसका जो अग्नि रूप जो शक्ति था, गुण था, उसको खो बैठा है। तो अगर चिंगार को फिर आग बनना है, उस कण को फिर अगर आग बनना है तो क्या करना होगा, उसको फिर से आग में अगर हम ले जाते हैं तो स्वतः ही वो आग बन जाएगा, हाँ। अच्छा ये दृष्टांत आप समझे, हाँ, अच्छा। तो हम भगवान के अंश हैं, भगवान से अलग हो जाने से हम, हमारे जो सच्चिदानंद जो स्वरूप था उसको हम खो बैठे। तो अगर हम सच्चिदानंद फिर से बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ना पड़ेगा, है ना। जब हम भगवान के साथ संपर्क जोड़ लेंगे तब हम भी फिर से सच्चिदानंद बन जाएंगे। तो भगवान के साथ संपर्क कैसे हम जोड़ सकते हैं, अब यह प्रश्न है, कैसे हम भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ सकते हैं। भगवान के साथ हमारे संपर्क जोड़ने के लिए हमें भगवान के पास अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा, हाँ। हम भगवान से अलग हो जाने से हम इस भौतिक जगत में गिर गए हैं। तो हम अगर भगवान के साथ युक्त होना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, युक्त होने का जो पद्धति है उसे योग कहा जाता है, योग। भगवान के साथ युक्त होने का जो तरीका है उसे योग कहा जाता है, तो ये युक्त होने का सबसे आसान तरीका है भगवान के पास प्रार्थना करना कि हे भगवान, कृपा करके आप मुझे इस भौतिक जगत से उद्धार करके अपने पास बुला लीजिए। ये प्रार्थना जब हम करते हैं तो भगवान उसको सुनते हैं या नहीं? भगवान के प्रति हम अगर कुछ कहते हैं, भगवान सुनेंगे या नहीं? आप कौन सोचते हैं कि भगवान सुनते हैं? हाथ उठाइए कृपा कर। बहुत अच्छा। भगवान हमारा हृदय में बैठे हुए हैं। आप मानते हैं परमात्मा के रूप में भगवान हर जीव के हृदय में विराजमान है। भगवान हमारा इतना नजदीक है, तब अगर हम भगवान को कुछ बोले तो भगवान सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। विशेष रूप से जब हम भगवान के उद्देश्य से कुछ कहते हैं, भगवान को संबोधन करके जब कुछ कहते हैं, तो भगवान को संबोधन करके जो कहना है उसे क्या कहा जाता है? प्रार्थना कहा जाता है। हम जब भगवान के पास प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कृपा करके आप आपके पास मुझे ले जाइए, भगवान सुनते हैं और भगवान तब हमें उनके पास ले जाते हैं। तो भगवान के पास प्रति ये प्रार्थना बहुत जरूरी है। तो आप देखे हैं कि हम लोग जहां भी जाते, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरेक ठीक है, अच्छा ऐसे आप सुन सकते हैं? आप जो पीछे बैठे हैं, हम जब जोर से बोलने से आप सुनेंगे? सुन रहे हैं? अच्छा, तो आप देखे हैं कि हम कीर्तन करते हैं, हम गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सुने हैं ना? तो आपको आपको पता है क्यों हम लोग ये हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं? क्योंकि हाँ, ये हरे कृष्ण है महामंत्र। महामंत्र का मतलब है ये भगवान की प्रति एक विशेष प्रार्थना। ये जो महामंत्र है ये भगवान के प्रति प्रार्थना है, जिसका उद्देश्य होता है कि हे भगवान, आप कृपा करके हमें इस भौतिक जगत से उद्धार करके आपके पास ले जाइए, आपको सेवा करने का मौका दीजिए, आपको प्यार करने का अवसर दीजिए। ये जो प्रार्थना है हरे कृष्ण महामंत्र है वो प्रार्थना, और इस कारण हम हर समय इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं। तो अगर कोई भगवान के साथ अपना संपर्क जोड़ना चाहते हैं तो उनको भगवान के प्रति प्रार्थना करना चाहिए और उनको हरे कृष्ण महामंत्र सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम, सबसे फलदायी और सबसे आसान प्रार्थना है, जो प्रार्थना भगवान खुद आकर हमें सिखाए हैं। भगवान खुद भक्तों के रूप में आकर, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हमें सिखाया कि अगर तुम भगवान के पास जाना चाहते हो तो तुम इस मंत्र को कीर्तन करते रहो। तो आप आपको पता था कि हम क्यों ये हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं, पता था आपको? अच्छा, तो आप पता चल गया है क्यों हम ये महामंत्र को कीर्तन करते हैं, क्यों ये महामंत्र है भगवान के प्रति एक विशेष प्रार्थना। तो आप भी बोलिए, हरे कृष्णा,
हरे
कृष्णा, कृष्णा
कृष्णा,
हरे हरे,
हरे राम,
हरे राम,
राम
राम, हरे
हरे।
बहुत धन्यवाद। हम अगर ये कीर्तन करेंगे तो आप भी हमारे साथ कीर्तन करेंगे? हाँ, अच्छा, तो मंत्र तो आपको पता चल गया है ना? हाँ, आपको पता है।